आप सबको जय मसीह की। आज हम आठवें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। जब हम आठवें अध्याय में आते हैं, अभी सात अध्याय तक हम देख रहे हैं कि नूह और उसका परिवार उस जहाज में जो परमेश्वर ने बनाया है, और पिछली बार हमने इस बात को देखा था कि नूह का जहाज एक प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है और परमेश्वर के हाथ में द्वार है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं द्वार है, और जो उसमें होकर भीतर जाएगा, प्रवेश करेगा, वो जीवन पाएगा और बचेगा। और ये हमने कुछ बातों को देखा था। जब आज हम आठवें अध्याय में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से अब जल प्रलय है वो समाप्त हो रहा है और अब एक नई रीति से कहानी आगे बढ़ रही है। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि उत्पत्ति 11 अध्याय एक ऐसे अध्याय है जिसको समझना बहुत जरूरी है, और वो फाउंडेशन है, पूरी आधार है। और जैसे जैसे हम बढ़ते हुए 11 अध्याय तक आएंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से जो चीज जिस चीजें हमने 11 अध्याय में एक संक्षिप्त रूप में देखी है, वही चीज आगे चल के विस्तृत होके और खुलासे में बढ़ती चली जा रही है। और इसलिए बार बार आप घर में भी जाकर अध्ययन कीजिए, पढ़िए और देखिए किस रीति से। अब जब आठवें अध्याय में आते हैं तो शीर्षक लिखा हुआ है महाजल प्रलय का अंत। और मैंने पिछली बार बोला था कि जो जल प्रलय है ये खोजबीन की गई है, इस बात की खोजबीन, जो क्या नाम से तरह तरह से रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को खोजा है और बार बार वो प्रमाणित कर चुके हैं कि ये बाइबल के इतिहास का जो जल प्रलय है वो सच्ची घटना घटित हुई है। ये केवल मनगढ़ंत कहानी नहीं है, और ये विश्वव्यापी जल प्रलय था, पूरे संसार में एक साथ आया था, और पूरे संसार में और उस जल पे भूमि पर भी बहुत बड़ा असर हुआ था, पृथ्वी पर भी बहुत बड़ा असर हुआ था। और हम उसके बाद आज कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम देखते चले जाएंगे। सो आइए मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका आठवां अध्याय, पहले पद से मैं शुरू करूंगा। लेकिन अगर आठवें अध्याय के इन पूरे अध्याय के मुख्य विषय पे आप जाना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं परमेश्वर अपने लोगों को और अपने कथन को और अपने लोगों को भूलता नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को और अपने कथन को, अपने शब्दों को, वाक्य को भूलता नहीं है। जो करता है, कहता है, वो करता है, और अपने लोगों की वो सुधी लेता है, चिंता करता है। और तब उसमें, जब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस पूरे आठ अध्याय को तीन भागों में बांट सकते हैं। इन आठ अध्याय को तीन बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला भाग है जो आठ अध्याय के पहले पद से लेकर 12 पद तक है, उसमें हम नूह के धीरज को देखते हैं। नूह की प्रतीक्षा है, धीरज है, बाढ़ जोना है। फिर उसके बाद आठ अध्याय के 13 पद से लेकर 19 पद तक नूह को परमेश्वर की ओर से निर्देश है, उन निर्देशों को आगे चल के हम विस्तार के साथ देखेंगे। और फिर आठवें अध्याय के 20 से 22 पद तक नूह की आराधना है, नूह की आराधना है। सो हम इन तीन बातों को, तीन बिंदु में इन बातों को बांट सकते हैं। सो जब पहले खंड में हम जाते हैं नूह का धीरज, अब यहां पर पहले पद में दर्ज लिखा है परंतु परमेश्वर ने नूह की तथा जितने वन पशु और घरेले पशु उसके साथ थे, साथ जहाज में थे, उन सब की सुधि ली। अब ये जो सुधि लेने का बात है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद परमेश्वर कोई चीज को भूल गया है और एकदम से, इंग्लिश में शब्द आया है ही रिमेंबर्स, उसने उनको याद किया। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की योजना में सब कुछ पहले से निर्धारित है और परमेश्वर अपनी योजना को किस प्रकार से एक एक चरण में आगे बढ़ा रहा है उसको हमें समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से, क्योंकि परमेश्वर कभी भूलता नहीं। परमेश्वर के चरण में लिखा है गिनती उसके 9:13 में कि और वो ईश्वर नहीं कि वह अपने कहे हुए बात को भूल जाए। लेकिन क्या हो रहा है, 3:15 में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है। उत्पत्ति उसके 3:15 में परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की भविष्यवाणी है, परमेश्वर का सुसमाचार है, और उसके अनुसार परमेश्वर किस प्रकार से आगे आगे चला। गिनती 19:23 पद मैं याद कर रहा था कुछ जो मैंने बोला परमेश्वर भूलता नहीं है, गिनती उसका 19:23 पद। तो यहां पर हम आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार से अब परमेश्वर उसी के अनुसार कार्य कर रहा है। पाप के कारण यह जल पड़ आया और जल पड़ने में परमेश्वर ने सब कुछ को नाश कर दिया, सब कुछ को। केवल वही बचे हैं, वही बचे हैं जो उस जहाज में जिन्होंने सवार थे, जो उसमें थे। ये उस आने वाले भविष्य में अंत में जो परमेश्वर का महान निर्णय होगा उसका एक चित्रण है, प्रतीक है, उसका एक चित्रण है। किस प्रकार से जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके द्वारा जीवन पाएंगे, उसके द्वारा अनंत जीवन पाएंगे, वे उसमें के साथ अनंत काल में राज करने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। अर्थात क्या है कि इस बात का चित्रण है कि एक समय आएगा जो समय परमेश्वर निर्धारित किया गया है, जिस समय संसार का अंत होगा और फिर इस महाजल पड़ने से भी बढ़कर एक घटना घटेगी जिसमें संसार का न्याय किया जाएगा और जो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया है वो अनंत जीवन में उसके साथ राज करेंगे, अन्यथा सब दंड में के भागी हो जाएंगे। सो इसका लेकिन यहां पर जो कह रहा है तो क्या हो गया, अब परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और पानी थम गया। परमेश्वर न केवल सृष्टि का करने वाला है लेकिन परमेश्वर सृष्टि का अधिकारी है। हवा पानी सब कुछ उसकी आज्ञा को मानते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके इकलौते पुत्र ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर के जीवन की पवित्रता, परमेश्वर के जीवन का अधिकार, परमेश्वर के जीवन की सामर्थ, परमेश्वर के जीवन की प्रभुसत्ता सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में प्रदर्शित हुई है और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मेरे और आपके संसार के बीच में रहा है और उसने इस बात को दर्शाया। तो जिस प्रकार से हम यहां पर देख रहे हैं उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को भी देते हैं। इसीलिए जब वो पृथ्वी पर था, उसके शिष्यों के साथ था, उसने आंधी को रोका, तूफान को रोका, बाढ़ को रोका। जब शिष्य नाव पे थे और एकदम से तूफान आया, नाव डूबने लगी, सब कुछ जल थम गया, उसने आदेश दिया। सो वो अधिकार जो परमेश्वर का देखते हैं वो निरंतर बना चला जा रहा है, बीच में बहुत सारी घटनाएं। तो जो आदि का परमेश्वर है वो यीशु मसीह है और जो जिस रीति वो यहां पर कर रहा है वो आगे अपने आप को किस प्रकार से दर्शा रहा में देखना समझना है। सो ये नहीं कि उत्पत्ति का परमेश्वर कोई और है, और इसीलिए आगे चल के कुछ बात को और हम समझने का प्रयास करेंगे। अब ये थम गया और लिखा है और आता समुद्र के स्रोत और आकाश के झरोखे। अब देखिए जब ये जल पड़े हुआ तो जल पड़े केवल ऊपर से बारिश नहीं हुई, केवल ऊपर से बारिश हुई लगातार 40 दिन तक बारिश होती रही, बहुत बारिश, लेकिन जो पृथ्वी के सोते थे वो भी फूट गए थे। अर्थात पानी जो है ऊपर से नीचे से चारों ओर से इस रीति से भरा कि उसने सब कुछ को घेर लिया। और इसीलिए अब परमेश्वर के निर्देश के अनुसार, परमेश्वर के आदेश के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि वो चाहे आकाश के झरोखे थे, चाहे समुद्र के स्रोत थे, जो कुछ थे वो सब कुछ रोक दिए गए। परमेश्वर ने कहा अब रुक जा। जब परमेश्वर ने कहा तो ऐसा हो जा बारिश हो, तो बारिश हो गई, सोते फूट गए। अब ये क्यों, अब परमेश्वर का कार्य पूरा हो रहा है। और इसलिए जब वो लिखा है कि परमेश्वर सुधि ली, मतलब यह है कि अब परमेश्वर ने जान लिया कि यह समय अब आ गया है कि अब इस काम में और आगे बढ़ना है। और तब उसको देखिए लेकिन क्या हुआ, तीसरे पद में, तब पृथ्वी के जल धीरे धीरे घटने लगा और 150 दिन बीतने पर जल घट गया और सातवें महीने के सातवें दिन जहाज अरारात पर्वत पर जा टिका और जल दसवें महीने तक घटता चला गया और दसवें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई देने लगी। अब क्यों परमेश्वर इन दिनों के बारे में वर्णन कर रहा है? बाइबल का परमेश्वर बहुत ही सुंदर परमेश्वर है। वो इस तरह से बात करता है कि मनुष्य के अंदर कोई भी भ्रम ना रह जाए। और बाइबल का जो इतिहास है वो स्पष्ट है, स्पष्ट है। तिथि के अनुसार, समय के अनुसार, दिन के अनुसार, घंटों के अनुसार सब कुछ है। ज्यादा विस्तार में जानते हैं, लेकिन सात अध्याय उसका छह पद, सात अध्याय दस पद, सात अध्याय ग्यारह पद, सात अध्याय बारह पद, आठ अध्याय तीन पद, आठ अध्याय कई सारे पद ऐसे ही जहां पर पूरी गणना करके दी गई है। और जब उनको आप गणना करते हैं तो लगभग 370 दिन वो आते हैं जबकि नूह को जहाज में अंदर रहना पड़ा था। अब सोचिए 370 दिन नूह और नूह का परिवार जहाज में है। अद्भुत लगता है, कैसे उनके पास भोजन था, कैसे उनको हवा मिल रही थी, कैसे उनको शुद्ध पानी मिल रहा था, क्या कुछ परमेश्वर की व्यवस्था सब कुछ कर रहा था। अगर वो ना होता चार दिन बाद वो मर जाते हैं। क्या इतने दिन बीमारी नहीं हुई, क्या इतने दिन कोई और परेशानी नहीं हुई, इतने पशु थे, सब कुछ थे। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रण कर रहा है, नूह नहीं नियंत्रण कर। और किसी एक व्यक्ति ने डीएल मूडी से एक प्रश्न किया, उसने प्रश्न किया कि उसने ये कहा कि मैं अपने उद्धार को लेकर कई बार मुझे शंका उत्पन्न होती है, मुझे कई बार अपने उद्धार को लेकर शंका उत्पन्न होती है। तो डीएल मूडी ने उससे कहा कि तुम मुझे एक बात बताओ कि नूह और नूह का परिवार जहाज में सुरक्षित था, वो अपनी भावनाओं के कारण सुरक्षित था कि उसकी भावना ऐसी थी उसको सुरक्षा प्रदान कर रही थी, या उस जहाज के कारण वो सुरक्षित था जिसको परमेश्वर ने नियंत्रित करा था। तो उस व्यक्ति ने कहा अपनी भावना के अनुसार नहीं, लेकिन उस जहाज के कारण जिसको परमेश्वर ने नियंत्रित करा था। यह सच्ची बात है। और यह बात है कि अगर मैंने और आपने उद्धार को प्राप्त किया है, यदि मैंने और आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप जहाज में प्रवेश किया है, तो हमारा उद्धार अपने प्रयास में नहीं है सुरक्षित, अपने प्रयास में सुरक्षित नहीं है। हमारा उद्धार अपनी भावनाओं के अंतर्गत सुरक्षित नहीं है कि हमारी भावनाओं के अनुसार हम अपने उद्धार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन में उद्धार का जो कार्य है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसकी सुरक्षा में है जो उसमें हम वास करते हैं, जिसको वो स्वयं नियंत्रित करता है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। हम इस घटना में भी त्रिएक परमेश्वर को अभी आगे चल के देखेंगे। यह है सो अद्भुत रीति से। तो यहां पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि नूह अपने विश्वास, जरूर उसका विश्वास था, लेकिन अब सोचिए 370 दिन क्या था उसके सामने। धीरज उसको रखना पड़ा, बाढ़ जोनी पड़ी, प्रतीक्षा करनी पड़ी, परमेश्वर पर निर्भर रहना। वो सोचता होगा, शायद उसके घर के लोग सोचते होंगे, शायद उसके बेटे, तीन बेटे थे और तीन बेटी, नूह था, नूह की पत्नी थी, नूह की पत्नी के साथ नूह के तीन बेटे थे और उनकी तीन पत्नी थी, आठ प्राणी थे। अब ये आठ प्राणी कई बार आपस में बात करते होंगे, कब तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा, कब तक हम ऐसे रहेंगे, कब तक हम पानी में, कहीं कल ना डूब जाए, कहीं परसों, इनके अंदर भी ये संघर्ष होता होगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, नूह परमेश्वर के साथ मिला होता और नूह को प्रोत्साहित करने वाला, उसके विश्वास को बढ़ाने वाला, उसके निर्भरता को देने वाला परमेश्वर था, जिसके कारण नूह उस समय तक, अंत तक धीरज धरते हुए, परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए वो वहां पर रहा। मेरे प्रियो, हम इस संसार में हैं, मैंने और आपने विश्वास किया है, विश्वास की यात्रा में हमें भी संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत कुछ आता है, बहुत सारी बातें थी, लेकिन हम अपनी भावना के द्वारा आगे नहीं बढ़ते। किसी ने इस बात को एक उदाहरण दिया, शायद मैं पहले भी बोल चुका हूं, एक बार एक रस्सी पर, तार पर तीन जन चल रहे थे, आगे फैक्ट था, तथ्य, बीच में फेथ था, विश्वास, और पीछे फीलिंग थी, भावनाएं। पीछे फीलिंग है, भावना है, बीच में विश्वास है, सामने तथ्य है, फैक्ट है। और जब तक ये फेथ, ये विश्वास आगे की ओर देख रहा है, तथ्य की ओर देख रहा है, वो सीधे आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जैसे वो मुड़ के भावना की ओर देखता है, वो डगमगाने लगता है। मसीह जीवन भावना के अनुसार चलने वाला नहीं है, लेकिन विश्वास के होकर यीशु की ओर ताक के चलने वाला है। और यही नूह के जीवन में था, यही नूह के जीवन था। और इसलिए यदि मैंने और आपने विश्वास किया है, जीवन में संघर्ष आते हैं, कठिनाइयां आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, समस्या आ सकती हैं, विरोध आ सकता है, हानि हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है परिस्थितियों में, लेकिन उन सब के मध्य में अगर हम यीशु की ओर ताकते रहेंगे, और इसीलिए कहा है यीशु की ओर ताकते रहो और उसके ओर ताकते रहेंगे इब्रानी उसका 12 अध्याय पद, तो हम सच में अपनी दौड़ को दौड़ने पाएंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। तो यहां पर हम एक बात को देखते हैं, और तब वो पर्वत पर रुका, मैं पर्वत पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन चार स्थलों पे इसका वर्णन है, पर यहां पर लिखा हुआ है 5 पद में, 10वें महीने तक हम घटता चला गया, 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटी पर दिखाई देने लगी। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ होने लगा तब ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली। परमेश्वर ने निर्देश दिया था एक दरवाजा बनाना और एक खिड़की बनाना। खिड़की छत से एक हाथ नीचे थी, नाप दिया था परमेश्वर ने। परमेश्वर, मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर हमारा सबसे उत्तम आर्किटेक्ट है, बना निर्माण करने वाला, और वो सब कुछ का डिजाइन देता है, उसके पीछे उद्देश्य रहता है, उसके पीछे उद्देश्य रहता है ना। और इसलिए ये खिड़की से उसने झांक के देखा। सच है, कुछ विद्वानों को मत यह है कि ये इस बात की ओर संकेत करता है, लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि हमें ऊंच ऊपर की ओर देखना है, पर मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन खिड़की उनकी आवश्यकता के अनुसार थी। अब क्या हुआ, और तब इसने नूह ने क्या करा, ठीक अच्छा कुछ पत्ते दिखाई दे रहे, कुछ हरियाली दिख रही, कुछ पानी सूख गया, ठीक है चलो मैं कौए को भेजता हूं। उसने कौए को भेज दिया। जब कौए को भेज दिया, लिखा है उसने उसे एक कौए को उड़ा दिया, और जब तक पृथ्वी पर जल सूख ना गया तब तक वो उधर इधर उधर उड़ता रहा। कौआ वापस नहीं आया, कौआ वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया कौआ वापस? बाइबल में कौआ अशुद्ध पक्षी माना जाता है, कई जगह इसका वर्णन। क्यों अशुद्ध पक्षी मनाता है? वहां पर कई सारे लाशें तैर रही हैं, उन पर वो बैठ सकता है आराम से, उन पर चल सकता है, उनको खा सकता है। आपने देखा होगा रास्ते में चलते हुए, जहां कुछ देखा कौवे खींच खींच के ले आते, चील के साथ कौवे भी शामिल होते हैं, इसीलिए चील और कौवा साथ कहा जाता है। सो ये एक चीज को दर्शाता है कि एक संसारिक और शारीरिक व्यक्ति, उसका स्वभाव सड़ी और गली और इन चीजों पर मजा लेने का। वो उस स्थान पर नहीं आया जहां वो सुरक्षित था, जहां उसको सब कुछ उसकी सुविधा थी, क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन उसी के बाद थोड़ी देर बाद एक कबूतर को उड़ाया जाता है। कबूतरी, तीन कबूतरी हैं जिनको उड़ाया गया है, तीन कबूतरी। उसके बाद फिर उसने अपने पास से कबूतरी को उड़ाया और उसने देखो जल भूमि पर घट गया कि नहीं। उस पर कबूतरी ने अपने पैर रखने के लिए कोई आधार नहीं मिला। अगर कबूतरी को कोई आधार नहीं मिला तो कौए को कहां आधार मिला? कौए का आधार पैर रखने का वही सड़ी गली चीजें थी। ध्यान दीजिएगा, मुझे और आपको अपने जीवन में पहचानना है, क्या मेरा और आपका जीवन प्रभु में सुरक्षित होने के बाद जब हम जरा संसार में आते हैं फिर हम अपने आधार को संसार की सड़ी और गली चीजों पर बनाते हैं? कितने मसीह जीवन ऐसे हैं? क्यों? क्योंकि स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है, जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और जब तक मन, अभी भैया बोल रहे थे, मैं हृदय तो धोखा देने वाली वस्तु है, जब तक हमारा हृदय का सच्चा परिवर्तन ना आए, वो हमारी सोच में, हमारी इच्छाओं में, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। इसको कहीं नहीं मिला और वो वापस आ गई। लिखा है उसके बाद जब कहीं आधार नहीं मिला इसलिए वो जहाज पर उसके पास लौट आई, क्योंकि समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। नूह ने हाथ बढ़ाया और उसे ले लिया। ये चित्रण बहुत सुंदर है। नूह कौन है उसका? नूह उस समय उसका स्वामी है, नूह उसकी देखभाल कर रहा है, परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया है। कई सारे बाइबल के स्थल किससे हम चित्रण में जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से उसने उसको ले लिया। फिर 10 पद में, तब 7 दिन ठहर करके उसने उस कबूतरी को जहाज से उड़ाया, फिर दूसरे का उड़ाया दोबारा। तब वो कबूतरी संध्या समय उसके पास लौट आई और देखो क्या हुआ, उसकी चोंच में एक जैतून की नई पत्ती थी। अब पानी सूख रहा है, अब पेड़ हरियाली फिर से बाहर फैल रही है। अब ये एक दिन की बात नहीं थी, दिन इसीलिए लिखा 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर उसको 5 दिन, तो कई सारे दिनों को गिनते चले, ये आपको मालूम चलता चला जाएगा, पीरियड बाहर निकल जाएगा उसमें। इन सारे घटनाओं के काल को निकालना कठिन नहीं है, नहीं है। 500 साल में उसको परमेश्वर ने यह आदेश दिया था, उसके बाद किस तरीके से वो आगे बढ़ा है। तब उसके बाद यह हो गया 12 पद में, तब 7 दिन ठहरने के बाद उसने उस कबूतरी को फिर उड़ाया और तब लिखा हुआ है फिर वो ना लौटे। क्यों ना लौटे? अब पानी सूख गया, अब ये लोग जान गए कि पानी सूख गया सब कुछ। और तब लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी पर से जल सूख गया, तब नूह ने जहाज के छत खोलकर बाहर दृष्टि की और देखो भूमि की सतह सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन तक पृथ्वी सूख चुकी थी। तब परमेश्वर ने नूह से ये कहा, तू जहाज से बाहर आ। परमेश्वर ने नूह से कहा, 7वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो 7वें अध्याय 15 पद और 17 पद में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा तू जहाज में अंदर जा। परमेश्वर के आदेश के अनुसार नूह जहाज के अंदर गया अपने परिवार को लेकर के, और परमेश्वर के आदेश के अनुसार अब नूह जहाज के बाहर आ रहा है। परमेश्वर किस प्रकार से सर्व अधिकारी सर्वनियंत्रण है, और परमेश्वर की अधीनता में किस प्रकार से उसने आपको रखा हुआ है, और तब वो बाहर निकला है। और जब वो बाहर निकला तब क्या हुआ आगे चल के, वो कहता है तब कहा निकला अर्थात तू, तेरे साथ तेरी पत्नी, तेरे पुत्र और तेरी बहू, ना केवल तू लेकिन आठों के आठों प्राणियों, तुम निकल के आ जाओ, बाहर आ जाओ। अपने साथ प्रत्येक शरीरधारी प्राण था जितने पशु पा है सब बाहर निकालो, वो कह रहा सबको बाहर निकालिया। और तब परमेश्वर फिर इस बात को दोहरा रहा है, किस बात को दोहरा रहा है कि पृथ्वी पर अत्यधिक फैले फूले फले और पृथ्वी पर बढ़ जाएं। अभी हम बाद में कल चल के कुछ एक चीज की तुलनात्मक रीति से देखेंगे जो आम उत्पत्ति उसके 3rd अध्याय में और इसके 8 और 9 अध्याय में, किस प्रकार से जो कुछ उत्पत्ति 3 अध्याय में आप देख रहे हैं ठीक पुनरावृत्ति उसी तरह से हो रही है। अर्थात क्या हो रहा है, ये सृष्टि जो बर्बाद कर दी हो गई, दंड पाया, सब कुछ आया, अब परमेश्वर को पुनः नई रीति से किस प्रकार से निर्मित कर रहा है और बढ़ा रहा है, लेकिन किस सिद्धांत में आके लेके चल रहा है, और दोनों समानता है उसमें, हर कदम पर समानता है। जब हम 9 अध्याय को पूरा कर लेंगे तब हम उसके दूसरा देखेंगे कि किस प्रकार से ये 8 और 9 अध्याय में वो चीजें पाई जा रही हैं जो आप उत्पत्ति 3 और 4 अध्याय में होते हुए देखते हैं। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं ये इस बात का है कि चूंकि पाप के कारण सब कुछ नाश हो गया, अब परमेश्वर उसी सृष्टि को पुनः एक नई रीति से दोहराते हुए आगे बढ़ा रहा है। केवल एक चीज नहीं हुई है, ये चीज नहीं हुई है कि अब परमेश्वर को पुनः मनुष्य के जीवन में श्वास फूकने की जरूरत नहीं है। जो आदम की वाटिका में आदम और हवा को बनाते समय वो श्वास फूका गया था, वो नहीं जरूरत है, लेकिन बाकी चीजों को आप देखिए बिल्कुल समानता आपको दिखाई देगी। पहले अध्याय उसके 28 पद में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था उसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी पर में फैल जाओ, और ये करीब 5 बार परमेश्वर ने इस बात को इन अध्याय में दोहराया है। क्यों? परमेश्वर की मुख्य आज्ञा थी। लेकिन हम एक चीज को देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर नियंत्रण कर रहा है, सार कुछ है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य के जीवन को हम देख रहे हैं किस प्रकार का उसका जीवन है, आगे चल के देखेंगे। सो यहां पर परमेश्वर कहता है ठीक है पृथ्वी पर, तब लिखा हुआ 18 पद में, तब नूह अपने पुत्रों, अपनी पत्नी, अपने बहू सहित बाहर निकल आया। पिछली बार हमने देखा था नूह आज्ञाकारी था, जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा वैसे उसने किया। आराम से हम इस बात को देख रहे हैं, है ना, जब जहाज बनाने के लिए कहा उसने उस समय प्रतीक्षा करी, निंदा को सहा, ठट्टा को सहा, उस समय सुसमाचार वो प्रचार कर रहा था, वो पश्चाताप करो लौटाओ, और वही प्रचार का विषय आज भी है, पूरे उस पर वही प्रचार का विषय है कि पश्चाताप करो लौट आओ, लेकिन उन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना, सुसमाचार को तिरस्कार दिया। और तब परमेश्वर किस प्रकार से यहां पर कह रहा है, कह रहा पृथ्वी पर चलने वाले जीव जंतु अपनी जाति के अनुसार जहाज में से निकले, सब निकले परमेश्वर के आदेश के अनुसार गए परमेश्वर के। सो यहां पर पांचवें अध्याय में पहले पद से लेकर 18 पद तक हम इस बात को देखते किस प्रकार से, पहले नूह के धीरज को देखा है, नूह ने प्रतीक्षा करी है, नूह परमेश्वर निर्भर है और परमेश्वर का वचन बार 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 मुझे और आपको धीरज के बारे में सिखाता है। हमें परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है और यह मुश्किल होता है। धीरज धरना सबसे कठिन है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी हमारा मानवीय स्वभाव है, हम फट से हर समस्या का समाधान चाहते हैं। मेरा भी स्वभाव ऐसे ही, आपका भी स्वभाव है, और उसी के कारण कई सारी समस्याएं खड़ी आती हैं। उसी का हम हाथ पैर मारते हैं, हम इधर उधर करते हैं, कुछ और सोचते हैं और उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ उत्पन्न होता है। और मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना मांगनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे और आपको धीरज रखना सिखाए, प्रतीक्षा करना सिखाए। अब धीरज रखना और प्रतीक्षा करने मतलब यह मतलब नहीं है कि हम सुस्त बन जाए, आलसी बन जाए। हाँ, प्रभु उपाय करेगा अपने समय पे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, वो मतलब नहीं है, ये मतलब है। लेकिन एक मसीह जीवन कभी भी शॉर्टकट को लेकर चलने वाला जीवन नहीं है, ये ध्यान रखिए। हम कोई भी समस्या का जमान छोटा सा रास्ता ले लें, हो जाए पूरा, हो जाए, हो जाए पूरा सब समस्या, वो नहीं, वो रास्ता नहीं, ऐसा नहीं। हमें प्रार्थना करना है, हमें बाढ़ जोना है, होता है कई बार परमेश्वर कम समय में उत्तर देता है प्रार्थना, कई समय परमेश्वर लंबे समय में रहता है। और अगर भजन संहिता में आप पढ़ेंगे तो दाऊद बार 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 इस प्रतीक्षा की बात करता है, बार बार, समय नहीं कि मैं उन पद बजाऊं, लेकिन बार बार उस बात को कहता है। तब आगे चल करके अब यह सब कुछ हो गया, ये सब निकल गया है, और अब उसके बाद तब हम 22 पद में आते हैं। अब यहां पर हम नूह की आराधना को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमने प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हर्षित भैया की अगुवाई करी, जिसको आज मैं छूना चाह रहा था, वो उन्होंने पहले उसको शेयर कर दिया, वो अच्छा हो गया एरियर में, उसके 31 अध्याय को हम आगे देखेंगे। लेकिन किस प्रकार से यहां पर पहली बात 20 पद से अब नूह यहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, क्या कर रहा है। तब नून ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, अब यह सब बाहर निकल गया है। नून ने एक वेदी बनाई, पहली वेदी है, बलिदान उससे पहले चढ़ाया गया लेकिन वहां वेदी का वर्णन नहीं है। हाबिल ने बलिदान चढ़ाया था, लेकिन यहां पर वेदी बनाकर क्या किया जा रहा है, वेदी बनाई, प्रत्येक शुद्ध पशु, प्रत्येक शुद्ध पक्षी की जाति से लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाई। 11 अध्याय फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो 11 अध्याय में जो कुछ भी घटा है उसी को परमेश्वर ने आगे चल के व्यवस्था में निर्धारित किया है और विस्तृत किया है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि मेरे और आपके दिमाग में जम जाए, कहीं भी देखेंगे। अभी व्यवस्था नहीं आई बलिदान की, बलिदान की व्यवस्था नहीं आई है, वो बाद में आई है। लेकिन क्यों परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है, ये चित्रण है, परमेश्वर डाल रहा है उनके अंदर, कौन कर रहा है, उसके नूह के अंदर हृदय में किसने डाला कि वो इस प्रकार से बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर डाला। लेकिन इसी के आधार पर आगे चल के जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं उसमें हम आगे कार्यों को देखते हैं और हम देखते चले आते हैं किस रीति से बढ़ता चला जाता है। तो लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, वो कह रहा है उसने कौन सी बलिदान चढ़ाए, होम बलि चढ़ाई, होम बलि चढ़ाई। लेवावस्था की पुस्तक में उसके पहले अध्याय से 5 बलिदानों का वर्णन है, 5 बलिदानों का, और 5 बलिदानों जो हैं, पांचों बलिदानों के जब आप पढ़ेंगे क्या क्या बलिदान उसमें चढ़ाया जाता था, क्यों चढ़ाया जाता था, उसके बाद आगे चलकर उसका क्या प्रभाव होता था, ये सारे लेवावस्था की पुस्तक में वर्णन है बहुत सुंदर रीति से। और सबसे पहला बलिदान ये होम बलि का बलिदान है, लेवावस्था उसके अध्याय से पहले अध्याय में पहले पद से लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले होम बलि का बलिदान। और होम बलिदान का बलिदान जो था एक समर्पण का बलिदान था, एक पवित्रीकरण शुद्धिकरण का बलिदान था, कि एक व्यक्ति अपने हाथों को उन पशुओं के ऊपर रखता था और तब उसके बाद वो मेमना बलिदान किया जाता था और उससे ये अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके, अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को पूरी इसके अधीनता में करता था। अब यहां पर यह नूह कर रहा है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, जो कुछ भी हम यहां देख रहे हैं उसको आगे चल के विस्तृत में देखेंगे और किस प्रकार से वो बलिदान को हम आगे और आगे बढ़ के देखते हैं तब फिर उसका। लेकिन इस बलिदान में क्या था, ये जब होम बलिदान चढ़ाया गया, वेदी बनाई गई, होम बलि चढ़ाया गया, 21 पद में, और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर अपने मन में कहा। यह बलिदान परमेश्वर को कैसा लगा? यह बलिदान परमेश्वर को सुखदायक सुगंध लगा, परमेश्वर को भावने वाला लगा, परमेश्वर को भाया, परमेश्वर से प्रसन्न हुआ। और जब हम होम बलि के बलिदान में जाते हैं तो वो बलिदान ठीक उसी रीति से परमेश्वर को सुगंधदायक प्रतीत होता था। समय नहीं है कि मैं जाऊं, लेकिन लेवावस्था एक अध्याय को आप जाके घर में पढ़ लीजिएगा, आपको बार बार ये बात मिलेगी, उसमें स्पष्ट है। लेकिन जब हम आगे चलते हैं तो ठीक ये बलिदान, अब आगे चल के परमेश्वर ने विधि ठहराई दी थी कि ये बलिदान कैसा होगा, ये बलिदान वो उसमें नर होगा, वो शुद्ध होगा, वो पहला उठा होगा। ये तीन चीजें थी उसमें, जब आगे चल के देखते हैं। और इसी बलिदान को फिर हम आगे चलकर देखते हैं, ये बलिदान प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ। ये बलिदान पर प्रभु यीशु मसीह पूरा, निकालिए मेरे साथ इफिसियों का 5 अध्याय उसका दूसरा पद, इफिसियों का 5 अध्याय उसका दूसरा पद। सुखदायक सुगंध बनकर हमारे लिए क्या करा, अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु का जो बलिदान था वो सुखदायक सुगंध था। नो ने कौन सा बलिदान चढ़ाया था? नो के बलिदान के द्वारा परमेश्वर को इस बलिदान सुखदायक सुगंध लगा, और उसके कारण परमेश्वर ने उसकी भेंट को, उसके बलिदान को स्वीकार किया। जैसे वो बलिदान हुआ, ध्यान दीजिएगा, बलिदान के बाद तब परमेश्वर ने क्या कहा, 21 पद 8 अध्याय 21 पद, और यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर मन में कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप ना दूंगा। पहली बात, दो बातें यहां पर हम देखते हैं। जब ये चीज उसको प्राप्त हो गई परमेश्वर को, तो परमेश्वर के मन में एक चीज आई, अब मैं दोबारा इस पृथ्वी को इस तरह से नाश नहीं करूंगा। दंड देने के लिए मना नहीं करा है, परमेश्वर दंड देगा, समझे? और इसीलिए जब आप परमेश्वर के वचन को अगर सही रीति से पढ़े, परमेश्वर के वचन में यद्यपि द्वितीय आगमन के सामने में बहुत सारी घटनाओं का वर्णन है, चाहे आप मत्ती उसके 24-23 अध्याय में जाएं, चाहे लूका में जाएं, जहां जहां प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के चिन्हों का वर्णन है, वहां पर युद्ध का वर्णन है, जाति जाति पर चढ़ाई का वर्णन है, अकाल का वर्णन है, ये सब कुछ का वर्णन है। लेकिन वहां पर यह वर्णन नहीं कि मैं वर्षा के द्वारा नाश करूंगा। क्यों? परमेश्वर अपने कथन से मुकरता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाढ़ के दौरान छुटपुट में स्थानीय बाढ़ आती हैं, लेकिन एक साथ विश्व में कभी एक साथ बाढ़ नहीं आएगी। परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थानीय बाढ़ और विश्वव्यापी बाढ़ दोनों में फर्क है, स्थानीय जल पड़ने और विश्वव्यापी जल पड़ने दोनों में फर्क है। सो यहां पर पहली बात, परमेश्वर ने क्या कहा, अब मैं शाप नहीं दूंगा। अभी उसने अपने मन में सोचा है, अभी उसने इस बात को नूह के सामने नहीं खोला है। लेकिन एक बात, दूसरी बात यहां, दूसरी बात एक और परमेश्वर बात कह रहा है, वो कह रहा है, यद्यपि बचपन से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। क्या मतलब है? यह मतलब है परमेश्वर ने न्याय किया है, दंड दिया है, लेकिन पाप खत्म नहीं हुआ है, पाप समाप्त नहीं हुआ है। अगर पाप समाप्त हो जाता तो प्रभु यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं होती, नहीं होती। और इसलिए परमेश्वर एक बात यह कह रहा है कि मैं इस प्रकार से अब नाश नहीं करूंगा, लेकिन यह भी जानता है कि मनुष्य का जीवन में पाप का स्वभाव है। अब वो उस पाप के स्वभाव से मनुष्य को बचाने के लिए, निकालने के लिए वो उपाय करेगा, ताकि वो भेंट चढ़ाए, वो बलिदान चढ़ाए जो परमेश्वर के सामने सुगंधदायक हो, और जिसके द्वारा, जिस बलिदान के द्वारा मैं और आप बच सके। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जैसे उन्होंने सेवा आरंभ करी, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का अगर परिचय उन्होंने कराया तो इस तरह से कराया, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह का परिचय सबसे पहले उसको उस मेमने के रूप में कराया गया, वो मेमना जो आगे चल करके मेरे और आपके पाप के लिए क्रूस पर बलिदान होगा। क्योंकि इससे पहले जितने मेमने बलिदान हुए या जितने भी पशु पक्षी बलिदान हुए वो मनुष्य के पाप का अनंतकालीन छुटकारा नहीं करा सके, अनंतकालीन छुटकारा नहीं करा सके। लेकिन ये मेमना, और इसलिए ये बलिदान यहां पर इस बात का प्रतीक हो रहा है कैसे परमेश्वर बलिदान की प्रथा ठहराएगा और उस बलिदान के द्वारा आगे चल करके उसका एक इकलौता पुत्र स्वयं बलिदान होगा मनुष्य के लिए। अभी हम चल के देखेंगे क्यों तब मनुष्य कैसे छुटकारा प्राप्त करेगा। जो उसके उद्धार की योजना उत्पत्ति 3:15 है सुसमाचार, उसको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कदम बाय कदम खोला जा रहा है और आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से परमेश्वर अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा और उस काम को पूरा करेगा। इसलिए मैं बार बार उस बात को दोहरा रहा हूं, जो खास से वचन के विद्यार्थी हैं सीख रहे हैं आगे से बात, उनको ये मानना चाहिए कि 11 अध्याय और भी गहन अध्ययन में जाना चाहिए इसको, तब आगे बढ़ के। तब ये हुआ जैसा प्राणी को अब नाश किया फिर मैं कभी ना कहा, जब यह हो गया तब एक नई चीज ठहराई गई। इससे पहले अभी तक ऋतु के बारे में वर्णन नहीं है, ऋतु के बारे में विद्वानों का यह मत है कि ये जो जल पर्ण था वो इतना अधिक भयंकर था कि उसके कारण भूमि पर असर पड़ा और भूमि कुछ झुक गई। वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं, अलग अलग मतों में अलग अलग भूमि को लेके एक उदाहरण दे दूं। कुछ लोग कहते हैं कि नाक के फन पर पृथ्वी रखी हुई है और जब वो करता तो ढीलती है, ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं पर ज्यादा उस पर आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, तो अलग अलग मत है। लेकिन इस बार का इस पृथ्वी पर असर हुआ है बहुत भयंकर। तब परमेश्वर ने क्या, तब परमेश्वर ने ये सीजन ठहराए, 3 चीजें, बोनी और कटनी, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म और शरद, दिन और रात, सप्ताह समाप्त ना होंगे। उसके बाद परमेश्वर ने कई चीजें, अब परमेश्वर नई रीति से ठहराता जा रहा, अभी आगे 9 अध्याय में कुछ बातों को देखेंगे। पहली चीज परमेश्वर ने, परमेश्वर को निकाला, नूह ने आराधना की, नूह के बलिदान को स्वीकार किया गया, उसके बलिदान को स्वीकार किया गया। उसके बाद परमेश्वर का यह है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर ने इस सीजन को ठहरा दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं जब बाहर लोगों से मिलता हूं बातचीत करता हूं जो क्या नाम से, तो मैं ही कहता हूं कि हम उत्तर भारतीय लोग तीनों इन सीजन का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं, है ना। बरसात में खूब ढेर सारी बरसात, गर्मी में खूब अच्छी गर्मी, जाड़े में खूब अच्छा जाड़ा। प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। एक विचार ऐसी शेयर करो मैं, लेकिन ये परमेश्वर तो इसको ने अपने आप नहीं उठाए, ये कोई चीज घटना घट गई इसलिए ऐसे हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने इसको ठहरा है। परमेश्वर सृष्टि का बनाने वाला है, परमेश्वर सृष्टि का संचालन करने वाला है, परमेश्वर सृष्टि को नियंत्रण करने वाला है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है। हम हर उस पे परमेश्वर के नियंत्रण को देख रहे हैं। परमेश्वर परिस्थिति को नियंत्रण कर रहा है, परमेश्वर मनुष्य को नियंत्रण कर रहा है, परमेश्वर पशुओं को नियंत्रण कर रहा है, परमेश्वर हर एक को नियंत्रण कर रहा है। और परमेश्वर एक बात को चाहता है, परेशानी क्या हुई, जब जब मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर किया तब तक गड़बड़ हुआ। तो समाधान क्या है कि मुझे और आपको अपने जीवन को भी परमेश्वर के नियंत्रण में रखना है। तब 9 अध्याय से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां कुछ बातों को हमने जल्दी जल्दी में देखा है। मैंने कहा समय कम होने के कारण थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। 9 अध्याय में, अब जब 9 अध्याय में हम आते हैं तो 9 अध्याय में परमेश्वर पूरी रीति से सृष्टि को पुनः स्थापित करता है हम इसको 3 भागों में इसको भी बांट सकते हैं 9 अध्याय को। पहले से 7 पद तक जीवन के लिए परमेश्वर का उपाय, 9 अध्याय के 1-7 पद तक जीवन के लिए परमेश्वर का उपाय, आशीष, अधिकार, निर्देश। 8 पद से लेकर 17 पद तक परमेश्वर की वाचा का स्थापित होना। परमेश्वर ने वाचा के बारे में बात करी है, लेकिन किस प्रकार से अब परमेश्वर वाचा को स्थापित करता है नूह के साथ, और तब फिर आज हमने नई वाचा को देखा जिस पर मैं छूने वाला था। तब तीसरी बात, वाचा का स्थापित करना मतलब उसकी समस्त सृष्टि के लिए, उसके समस्त लोगों के लिए। यह वाचा दो प्रकार से थी, सृष्टि के साथ और लोगों के साथ। बातों को देखें तब तीसरी बात, 18 पद से लेकर 29 पद तक अनैतिकता का पुनः आरंभ, अनैतिकता का पुनः आरंभ, उसका प्रभाव उसका परिणाम, उसका प्रभाव उसका परिणाम। ये तीन हम बिंदुओं में इन बातों को देखते हैं। तो अब नूह जहाज से निकल गया है, परमेश्वर ने सब कुछ सूखा कर दिया है, जल प्रलय समाप्त हो गया है, धीरे धीरे सृष्टि बढ़ने लगी है। परमेश्वर उनसे चाहे कि पृथ्वी किस प्रकार से आशीष पाए, और तब उसके बाद नूह बाहर निकल करके परमेश्वर की आराधना करता है, धन्यवाद को प्रकट करता है और होम बलि चढ़ाता है, पहली बार आता है। लेकिन परमेश्वर इस बात को कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, आरंभ से बुरा उत्पन्न हो रहा है, ये सब कह परमेश्वर इन रीतियों को ठहराता है। तब उसके बाद नवे अध्याय में परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। एक चीज को ध्यान रखिएगा, बार 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 परमेश्वर ये कह रहा है, लेकिन जब आगे चल के हम जाएंगे तब देखेंगे मनुष्य की वही हठधर्मी, वही अनज्ञाकारिता फिर हम देखेंगे जो अधन की वाटिका में दिखाई देती है, वही हम देखेंगे। ठीक है, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, अब पहली बात, अब परमेश्वर एक अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है? तुम्हारा डर और आंत तक पृथ्वी के प्रत्येक पशु, आकाश के प्रत्येक पक्षी, भूमि के रेंगने वाले पशु जंतु और समस्त मछलियों पर होगा। ये सब तुम्हारे हाथ में कर दिए गए हैं। वहां पर भी हम तीसरे अध्याय में भी इस बात को देखते हैं, दूसरे तीसरे अध्याय में, लेकिन यहां पर फिर से। तो पहली चीज, परमेश्वर भोजन की बात कर रहा है, ये सब अधिकार में दे रहे हैं। ठीक है, तब क्या कह रहा थी से? हर चलता फिरता जीवित प्राणी तुम्हारे भोजन के लिए होगा। हर चलता फिरता जीवित प्राणी, अब जीवित प्राणी के मतलब ये नहीं कि वो मनुष्य को कह रहा है जिसमें जीव कहा जाता है, जीव जीव के द्वारा जीवित रहता है। कई बार कहते ना, अरे आप लोग हत्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग मांस खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, है ना। बाइबल में अगर आपकी इच्छा नहीं है मांस खाने, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार हम बाराबंकी में थे, एक भाई विद्यार्थी था, वो प्रभु में रुचि ले रहा था, आने लगा, और एक दिन हमारे साथ बैठा था बाइबल स्टडी के बाद बुधवार को, और हमसे कहने लगा, मेरे साथ बात करा, कहने लगा, मैं उन लोगों से बहुत घृणा करता हूँ जो मांस खाते हैं, वे हत्यारे हैं। मैं तो खाता हूँ भैया, मैं तो खाता था, है ना, उसको नहीं मालूम, लेकिन बोलता चला रहा, जो उसके मन में आप बोलता चला बहुत देर बोलता रहा। अब मैं चुपचाप सुन रहा हूं, और जो कुछ उसके मन में था उसने पूरा उगल दिया। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। जब वो जान लगा, मैंने कहा द्विवेदी भाई एक बात बताइए, आपके पास अगले हफ्ते समय? कहने हाँ, मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आई, मैं आपके साथ बैठ के बात करूंगा। देखा, अच्छा था, आया बेचारा, और तब मैंने उसके साथ बैठ के बात करी प्रभु की दया से। मैंने कहा उस दिन आप ये कह रहे थे, हाँ हाँ, मैंने कहा आप इसका अर्थ मुझे समझाइए, जीव जीव के द्वारा जीवित रहता है। और तब फिर मैंने कुछ बातों को उसको करना शुरू करा, प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसके समझ में आ गया, उसके समझ में। कई बार उतावले में हम ये नहीं कह रहे कि हर एक को मांस खाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी को मांस खाने कारण आप हत्यारा या पापी ये ना ठहराइए। आपका शौक नहीं, मत खाइए, कोई बात नहीं, बाइबल बाध्य नहीं करती है, बाइबल बाध्य। और ये नहीं है कि क्रिश्चियन बनने के द्वारा जरूरी आपको खाना। कई बार कहते ना, अरे वहां मत जाना, नहीं तो उधर आपको गाय का खून पिलाएंगे। नहीं, वह गलत है, गलत है, गलत है, है ना। पर परमेश्वर के सिद्धांत हैं, परमेश्वर के तरीके हैं, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, परमेश्वर ने सृष्टि मनुष्य के लिए बनाई है, मनुष्य के लिए बनाई। उल्टा हो गया, आज हम उस सृष्टि के सामने अपने सरों को झुका रहे हैं, उल्टा हो गया। लेकिन यहां पर कह रहा है वो तुम्हारे लिए है, अब हर जो कह रहा है जैसे मैंने तुम्हें हरा साग पात दिया था, अब ऐसा लगता है कि इससे पहले शायद मनुष्य केवल शाकाहारी था, जैसे तुम्हें यह दिया था अब मैं तुम्हारे साथ इसके साथ कुछ और ऐड कर दे रहा हूं, और ऐड कर दे रहा हूं, खुश होइए। क्या कह रहा आगे चल करके, तब कह रहा है दिया था। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ना तो मैं हमेशा बोलता हूं शब्दों पर, काल पर, इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। दिया वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूं, वैसे ही तुम्हें सब कुछ देता हूं, तुम सब कुछ खाना, केवल तुम मांस को उसके प्राण सहित अर्थात लहू सत ना खाना। मांस खाना पाप नहीं है, लेकिन यह निर्देश था कि लहू के साथ ना खाना, लहू को ना खाना। पूरी बाइबल में करीब 385 बार लहू शब्द आया है, 385 टाइप लहू शब्द आया, जिसमें 302 बार पुराने नियम में आया है, 83 टाइम्स नए नियम में आया है, 20 बार इब्रानियों की पत्री में आया है, इब्रानी की पुस्तक में 20 बार, और 20 बार में से एक अध्याय ऐसा है जो 9 अध्याय है जिसमें 12 बार खून शब्द आया, लहू शब्द आया। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसा अध्याय है जहां पर उस लहू के कार्य को, सबसे लहू के कार्य को दर्शाया गया है। अभी हम उसमें आएंगे क्यों परमेश्वर ने लहू को खाने के लिए मना करा, क्यों लहू खाने के लिए मना करा। पहली बात, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, ठीक है, परमेश्वर जीवन है और वो जीवन देता है और मनुष्य में जीवन है। लेवस्ता उसका 17 अध्याय उसका 11 पद, लहू में, और सिर कहता है लहू में प्राण पायाता है, जीवन पायाता है, लहू में जीवन पायाता है। लेकिन आप एक मेहरबान से निकाल लीजिए इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 22 पद, एक पद को पढ़ेंगे, समय को ध्यान रखते जल्दी से पढ़ दीजिए 9 अध्याय 22 पद। और लहू बहाए बिना क्षमा नहीं है, लहू परमेश्वर ने ठहरा रखा था कि ताकि वो लहू मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए नियुक्त किया जा सके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने आरंभ से, अभी इससे पहले, सबसे पहले हाबिल का लहू बहाया गया था, अभी उस समय निर्देश नहीं दिया गया था, उसी के बाद परमेश्वर ने इस निर्देश को दिया तू लहू ना बहाना। ठीक है तुम मांस खा सकते हो, कर सकते हो सब कुछ है, लेकिन लहू ना खाना, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के साथ संबंध रखता है, परमेश्वर मनुष्य का सम्मान करता है और लहू की कीमत है। और इसीलिए जब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अभी व्यवस्था नहीं आई है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, लेकिन व्यवस्था से पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से लहू के चिन्ह के द्वारा इसराइलियों का मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला। जब निर्गमन उसके 12 अध्याय में आएंगे, 11-12 अध्याय में आप देखते हैं वहां पर तू मेमने के लहू को माना, उसके चौखट के चिन्ह पे लगाना, और जिन जिन चिन्हों पे चौखट पे लहू का निशान होगा वो क्या होगा, वो छोड़ दिया जाएंगे, बाकी सब नाश कर। सो लहू का चिन्ह इसलिए ठहराया गया था ताकि मनुष्य जीवन को प्राप्त कर सके, मनुष्य बच सके, मनुष्य छुटकारा पा सके। लेकिन आगे चल करके जब पशुओं का बलिदान आरंभ हुआ तो पशुओं का बलिदान पूरी रीति से पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, और इसीलिए अंततः प्रभु यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाना पड़ा। क्यों? बाइबल कहते हैं सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, और जिस प्रकार से एक कैदी को दूसरा कैदी छुटकारा नहीं दिला सकता, नहीं छुड़ा सकता, उसकी बेल भी नहीं ले सकता, उसकी जमानत भी नहीं ले सकता, इसी प्रकार से एक पापी को दूसरा पापी बचा नहीं सकता। और इसलिए एक पापी को बचाने के लिए अवश्य था कि एक निष्पाप हो जो उस पापी के स्थान पर बलिदान हो और जिसका लहू शुद्ध हो, पवित्र हो, निष्पाप हो, और उस शुद्धता के कारण, उस पवित्रता के कारण वो अशुद्ध पापी जो मनुष्य है उससे शुद्ध लहू के द्वारा उसका छुटकारा प्राप्त हो सके। और इसलिए परमेश्वर ने आरंभ से लहू को कीमती ठहराया था, और यही कारण था क्योंकि लहू में जीवन पाता है और परमेश्वर जीवन देने के लिए इस संसार में है। तब यहां पर परमेश्वर ने तो पहला परमेश्वर ने आशीष दी है, फिर परमेश्वर ने निर्देश दिया है, अधिकार दिया है, अधिकार के साथ निर्देश दिया है। निर्देश ये कि तू ये ना करना। और तब उसके बाद वो एक बात और कह रहा है, मैंने अभी बोल दिया लेकिन छठे अध्याय में छठे पद में यही बात है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। और तब फिर से वही बात दोहराई गई है, और तुम फलदायी बनो और बढ़ो, पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करो और उसमें भर जाओ। और मेरे प्रियो यही कारण है, यही कारण है जो अबॉर्शन है या गर्भपात है वो पाप है। इस चीज को ध्यान में रखिए, हमें सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से किस बात को कहा है। और जब आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो आप इस बात को देखते हैं, देखने जाएंगे। तब उसके बाद क्यों परमेश्वर कहना चाह रहा है, तुम्हें बढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम आदमी को मार डालोगे तो कहां बढ़ेंगे, बढ़ोतरी कहां होगी। इसका मतलब तुम मेरी इच्छा को, मेरी योजना को तुम स्वयं समाप्त कर रहे हो। मेरी इच्छा ये है संसार फैले बढ़े, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसको नाश कर दे रहे हो। और जो उसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा, क्योंकि मैं सृष्टि को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। तब इसके बाद आठ पद से लेकर एक बात को हम जल्दी से देखना चाहेंगे, 8 से 17 तक जाएंगे, उसके बाद समाप्त कर दूंगा मैं। यहां पर तब अब परमेश्वर क्या कहता है, अब परमेश्वर अपनी वाचा को स्थापित करता है। अभी तक उसने केवल कहा था मैं वाचा बांधता हूं, लेकिन वाचा को समझाया नहीं था, वाचा को कुछ बात बोला, लेकिन अब इस स्थल में परमेश्वर उस वाचा को और खुलासे साथ कह रहा है। क्या कहने जा रहा है, वो कहने जा रहा है यहां पर, तब परमेश्वर ने नूह के और पुत्रों से कहा, देख मैं स्वयं तुमसे तुम्हारे आने वाले वंश से अपनी वाचा स्थापित करता हूं, और प्रत्येक जीवित प्राणी से भी जो तेरे संग है, तेरे तत्व क्या पक्षी क्या पुरुष क्या सब कुछ बने, यहां तक कि पृथ्वी के प्रत्येक पर, 11वें पद में, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधता हूं और फिर कभी सब प्राणी जल प्रलय से नाश ना होंगे और ना कभी पृथ्वी को नाश करने के लिए जल प्रलय होगा। परमेश्वर दोहरा रहा है, इससे पहले भी हम देख चुके, उसने कहा उसको उसी बात को दोहरा रहा है, अब और खुलासे से कह रहा है कि जल पड़ने के द्वारा मैं किसी प्रकार से प्राणियों को मनुष्य को नाश नहीं करूंगा, दंड नहीं दूंगा। और इसका चिन्ह क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, वो कह रहा है, और परमेश्वर ने कहा जो वाचा मैं अपने साथ तुम्हारे संग जीवित प्राणियों के साथ जो तुम्हारे संग है सब आने वाले पीढ़ियों के लिए बांध रहा हूं, उसका चिन्ह ये होगा, मैं बादल पर अपना धनुष रखता हूं और यही पृथ्वी और मेरे मध्य में वाचा का चिन्ह होगा। जब बारिश आती है और बारिश होने के बाद आप रेनबो देखते हैं जो 7 रंगों में दिखे, कई तरह से लोग बोलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया चिन्ह है और इतना सुंदर लगता है समय ये चिन्ह है। कह रहा है क्या मतलब है, क्या परमेश्वर को स्मरण करने की जरूरत है, परमेश्वर कह रहा कि इस ये होगा और जिससे मैं स्मरण करूंगा, नहीं नहीं नहीं, कह रहा है मैं वाचा बांधूंगा और जब मैं पृथ्वी पर बादल लाऊंगा और बादल में यह धनुष दिखाई देगा और मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा और जो मेरे और तेरे प्रत्येक जीव शरीर प्राणी है साथ बांधी है और सब प्राणियों को नाश करने के लिए फिर कभी ऐसा जल प्रलय ना होगा। वो कह रहा है मैं जब उसको देखूंगा, क्या परमेश्वर बैठा देख रहा है बारिश हो रही है, अरे कब निकल रहा है, अच्छा निकल रहा अब मुझे बारिश हो दे, नहीं ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी ठहरा दिया है, अब ये मेरे और आपके लिए कि हम इसके द्वारा परमेश्वर को देख सके, परमेश्वर के शब्दों को याद कर सके, परमेश्वर के वचनों को याद कर सके, परमेश्वर की वाचा को याद कर सके और परमेश्वर के कथन को कि जो कहता है वो करता है। और ये जो धनुष है ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर की महिमा को। समय नहीं कि मैं पदों में जाऊं, लेकिन लिख लीजिए मेहरबान से यज़ेकेल उसका 1:28, प्रकाशों के 4:3, प्रकाशों के 10:1, जो इस बात को पढ़ते हैं किस प्रकार से, ये दो चीज का प्रतीक, एक तो शांति का प्रतीक है, एक दूसरा परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है। शांति का मतलब यह है कि अब मनुष्य बेचैन नहीं होगा, ओ कि बाढ़ में मर जाएंगे, यह मतलब है। जैसे ही धनुष दिखाई देता है हम लोग कहने लगते हैं अब बारिश खत्म हो जाएगी और अच्छा लगता है देखिए। सो ये नहीं कि हम उसके सामने सिर झुकाएं, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, लेकिन अब उसके द्वारा जो पद मैंने दिए उनको आप देखिएगा। ये आगे प्रकाश वाक्य में भी इसका स्पष्टीकरण है किस प्रकार से धनुष परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है। हमारा परमेश्वर महिमित परमेश्वर है, महिमा देने वाला परमेश्वर है। यह सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन करती है। रोमियो उसके पहले दूसरे अध्याय में पूरी रीति से इस बात को है कि कोई भी व्यक्ति उसके सुसमाचार का, यीशु मसीह परमेश्वर के होने का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि के द्वारा उसने अपनी महिमा को प्रकट किया है। और इसलिए तो यहां पर वो कहता है कि मैं इसके द्वारा ऐसा करूंगा। और तब आगे चल के कहता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, उस वाचा का चिन्ह जो मैंने और अपने और पृथ्वी के सब प्राणियों के मध्य बांधी है, मनुष्य के प्रति उसने बांधी। क्यों? केवल उस जल पड़ने के द्वारा मनुष्य ही नाश नहीं होते हैं, लेकिन उस जल के द्वारा पशु पक्षी सृष्टि नाश होती है, और सृष्टि में सब कुछ है, और सृष्टि परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती है। बार बार हम परमेश्वर, भजनकार दाऊद इस बात को कहता है, सृष्टि तेरी बात, और परमेश्वर सृष्टि के द्वारा हम गाते हैं, ऊंचे पर्वत गहरे सागर पहाड़ों पर वो गीत गाते हैं, है ना। सो किस रीति से, सो परमेश्वर जो वाचा बांध रहा है, अब ये वाचा वहां पर थी कि मैं नाश नहीं करूंगा। तब उसके बाद, इसके बाद आगे चल के परमेश्वर ने मूसा से वाचा बांधी, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, फिर परमेश्वर ने याकूब से वाचा बांधी, फिर परमेश्वर ने इसराइल से वाचा बांधी, और तब परमेश्वर ने इसराइल से वाचा बांधते हुए नई वाचा, जिसको आज हमने यर्मिया उसके 31 अध्याय 31 वचन देखा, उसमें बांधी, और तब वो नई वाचा हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। आरंभ वहां से हुआ, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं, ये वाचा का प्रतीक है, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं, ये वाचा का प्रतीक है, मैं बचाऊंगा, कोई और बचाने वाले, और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह हमारा बचाने वाला है। केवल वही हमें अनंत काल की मृत्यु से, दंड से, विनाश से बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्रियो, नूह का परमेश्वर मेरा आपका परमेश्वर है, और कैसे वो एक एक चीज को लेकर आगे चल रहा है। जब हम 10 में नूह, अभी मैंने नूह के दूसरे भाग को छोड़ दिया, सॉरी 18 अध्याय से, प्रभु ने चाहा अगले संडे को हम 18 अध्याय के 9 अध्याय के 18 पद से आगे जाएंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहां से एक कहानी बदल जाती है नूह के जीवन को लेकर, जो अभी हमने 9 अध्याय देखा, 9 अध्याय के 18 पद से बिल्कुल एक कहानी बदल जाती है। अब तब हम देखेंगे किस प्रकार से वही चीज दोहराई जा रही है जैसे मैंने उत्पत्ति 3 अध्याय में वर्णन किया, और तब हम उनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। आप पढ़कर आइएगा और तब आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे कि किस रीति से, और तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से। पर सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन बदल नहीं रहा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय 15 पद में है वो निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है, वो पीछे नहीं हट रही, क्योंकि परमेश्वर अपने कथन को हाँ और हम इनके साथ कहता पूरा करता है। परमेश्वर सहायता करें। प्रश्न ये है, क्या नूह के समान हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है? क्या नूह के समान हमारे अंदर विश्वास है? क्या वो परमेश्वर जो निर्देश दिए हैं हम उनको गंभीरता से लेते हैं? क्या वो परमेश्वर जो उस धनुष के द्वारा इस बात का कर रहा है वो धनुष है एक यीशु मसीह में होकर, कि जिसने उसकी ओर दृष्टि की हम याद कर सकते हैं वो हमारा बचाने वाला है, वो हमें नाश नहीं होने देगा। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, मेरे प्रियो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे, कि हम यीशु की ओर देख सकें, यीशु को देख सकें, यीशु पर विश्वास कर सकें, यीशु को अपना सकें, और यीशु हमारा मार्गदर्शक हो, और वही हमें अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में लेकर के अनंत में ले जाएगा। परमेश्वर मेरे आपकी सहायता करें। आई एम प्रार्थना।